हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन रिहा होने पर मुझे उस स्त्री के सामने पेश किया गया। अचानक उसने अपने दांतों से मेरे कंधे पर काटने का प्रयास किया। पर आप जानते ही हैं, हम जिन जादुई बावर्ची हैं, हमारे शरीर में मांस नहीं होता। उस स्त्री ने जैसे ही मुझे काटने की कोशिश की, उसके दांतों में दर्द होने लगा। वो मेरे शरीर में अपने दांत नहीं गड़ा पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पर ना तो वो मुझे काट पाई और ना ही मेरे कंधे पर दांत गड़ा पाई। तब उस स्त्री ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें काट क्यों नहीं पा रही हूँ? मैंने अपने दांतों से उसके कंधे पर काट लिया और कहा, तुम मुझे नहीं काट पाओगी, पर मैं तुम्हें अवश्य काट पाऊंगा। मैं तुम्हें मजलूमों के खून की सज़ा अवश्य दूंगा। तुम्हारी जिंदगी आज तक इस अधर्म के चलते ही चल रही है। ये कहकर मैंने उसके शरीर के हर हिस्से को काटकर उसका मांस खाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं बहुत क्रोधित था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही। मैंने उस स्त्री के गले के पास का सारा मांस खा लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। पर उसका मांस खाने के बाद मुझे अपना पेट बहुत भरा हुआ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो मेरे शरीर को संतुष्टि मिल गई हो। उस दिन के बाद से मुझे इंसानी मांस खाने की लत लग गई। जब मैंने आपके एक जिन को इंसानी मांस खाते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया। फिर धीरे धीरे वो जिन मेरे लिए भी इंसानी मांस लाने लगा। हम दोनों मिलकर उसे अच्छी तरह पकाकर खाने लगे। जैसे ही जिन महाराज अमन ने ये बातें सुनी, वो बहुत हैरान हुआ। साथ ही तारापरी भी बहुत हैरान थी। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता था? पर अब सारा सच उसके सामने था। तभी जिन महाराज अमन ने उस तीसरे जादुई बावर्ची की ओर देखते हुए कहा, तुम हमें इस बात का जवाब दो, क्या तुमने उस जिन के अलावा किसी और को भी इंसानी मांस खाने की आदत लगाई है? उस जादुई बावर्ची ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को भी इंसानी मांस खाने की आदत नहीं लगाई। उसे पहले से ही इंसानी मांस खाने की आदत थी। मैं तो उसे कुछ दिन पहले ही मिला था। जैसे ही उसने ये कहा, भगवान के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गईं। अमन ने उस बावर्ची की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। उस स्त्री की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं था। तुम्हें किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। और रही बात इंसानों के मांस खाने की, तुम लोगों ने अपनी भूख के चलते कितने लोगों की जान ली होगी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर जिन महाराज अमन ने अपने हाथ के अंगूठे को उसके माथे के बीचों बीच लगा दिया। वो तीसरा जादुई बावर्ची चीखने चिल्लाने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर सफ़ेद रंग के धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गया। बाकी छह जादुई बावर्ची अपने साथी का ये हश्र देखकर कांपने लगे। वे जिन महाराज अमन की ओर सिर झुकाकर खड़े हो गए और डरते डरते बोले, हमारे लिए क्या हुक्म है जिन महाराज? अमन ने बड़े ही रौबदार लहजे में कहा, जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। याद रखना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वे बिना देरी के वहां से चले गए। तारापरी और सोनलपरी अमन के इस कदम को हैरानी से देख रही थीं। तारापरी मन ही मन सोचने लगी कि आखिर अमन को क्या हो गया है। अमन इतना आवेगी तो कभी नहीं था। वो हर निर्णय सोच समझ कर लिया करता था, पर आज उसने उस जादुई बावर्ची को सजा देने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। इसी बीच करिश्मा जी और अमरेंद्र जी जिन्नों की दावत से पहले विधि करने में लीन थे, क्योंकि ये विधि बहुत जरूरी थी। ये दावत उस सफ़ेद रंग के दरवाजे के अंदर बनी बड़ी सी गुफा में होने वाली थी। अमन उस दिशा में जाने लगा जहां से उसे अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोनल परी और तारा परी भी उसके पीछे पीछे चलने लगीं, जब तक बाकी जादुई बावर्ची अपना काम खत्म करने लगे थे। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वे अपने मरे हुए साथी का शोक मना सकें। अमन अपने माता पिता के पास गया तो देखा कि करिश्मा जी थोड़ी चिंता में थीं। उनके चेहरे पर इतनी चिंता देखकर अमन हैरान हो गया। वो बोला, क्या हुआ है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तभी अमरेंद्र जी भी वहां आ गए और अमन की ओर देखकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ को अचानक कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बातों का क्या मतलब हो सकता है। तभी दोनों परियां गायब हो चुकी थीं और वहां आकर उनकी बातें सुनने लगी थीं। वे भी जानना चाहती थीं कि आखिर करिश्मा जी ने अमन को इस तरह से क्यों बुलाया था। करिश्मा जी ने कहना शुरू किया, पता नहीं बेटा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। दादा महाराज से बात करके पता करो कि तुम्हारी बीवी तारा कहाँ है। मुझे तारा बहू की बहुत चिंता हो रही है, मुझे उसकी बहुत याद भी आ रही है। ये कहकर करिश्मा जी ने अमन को गले से लगा लिया। तारा करिश्मा जी का इतना प्यार देखकर मन ही मन इमोशनल हो गई। सोनल परी तारा की ओर देखकर बोली, तू कितनी किस्मत वाली है कि तुझे दो माएँ मिली हैं प्यार करने के लिए, एक तो रानी माँ और देखो तेरी ये सास करिश्मा जी भी तुझे कितनी मोहब्बत करती है। तारा ने भरे स्वर में सोनल परी से कहा, अब बस, अब तुम सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये सोचो कि अब हमें कब अमन के सामने आना होगा। दादा महाराज ने हमें ये नहीं बताया है कि हमें क्या, कब और कैसे अमन के सामने आना है। सोनल परी ने तारा परी से कहा,
मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। एक बार जिन्नों की दावत हो जाए उसके बाद तुम सामने आ जाना और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। अमन ने करिश्मा जी से कहा, मॉम आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने आपसे कहा ना कुछ नहीं होगा, मेरी तारा को मैं बहुत जल्द आपके पास ले आऊंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अमरेंद्र जी करिश्मा जी से बोले, हाँ हाँ करिश्मा जी आप तो बेकार में ही परेशान हो रही हैं, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, जिन्नों की दावत की तैयारी करते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा खाना बन भी चुका होगा। अमन ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी खाना बनने में अभी थोड़ा समय बाकी है क्योंकि खाना अब सात नहीं बल्कि छह बावर्ची बना रहे हैं। जैसे ही अमन ने ये कहा अमरेंद्र जी हैरान हो गए। अमन ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई कि उसने तीसरे जादुई बावर्ची को सजा दे दी है। वे दोनों फख्र भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखने लगे और बोले, हमें पूरी उम्मीद थी कि तू हमेशा इंसाफ ही करेगा। जल्दी ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया। छह जादुई बावर्चियों ने अपनी जादुई शक्तियों से पूरी सफेद रंग की गुफा को अलग अलग तरह के खानों से सजा दिया था। देखते ही देखते वहां जिन्नों का आना शुरू हो गया। लाखों करोड़ों की तादाद में सभी एक एक करके वहां आ रहे थे। सोनल परी और तारा परी सब कुछ अच्छे से देख रही थी। जिन महाराज सबसे आगे थे और दादा महाराज सबसे आखिर में आए। उन्होंने सभी जिन्नों की दावत के साथ साथ दो प्लेट एक्स्ट्रा लगवाई थी, एक सोनल परी के लिए और एक तारा परी के लिए। पिछली बार भी दादा महाराज ने दो प्लेट लगवाई थी। अमन दादा महाराज की ओर देख रहा था और सोचने लगा कि शायद कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर दादा महाराज को दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते सभी जिन्नों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद दादा महाराज ने सभी से कहा, तीन जिन्नों को उनके किए की सजा दी जा चुकी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी जो इंसानों के बीच रह रहा है वो किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देगा, क्योंकि जिन महाराज अमन अब किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सभी जिन्नों पर अपनी निगाह रखेंगे।
कुछ जिन परेशान हो गए, कुछ उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ जिन इसलिए डर गए क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को परेशान किया था। उन्हें लगा कि अगर जिन महाराज अमन को पता चल गया तो उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। इससे पहले कि अमन किसी को कुछ कहता, कुछ जिन हाथ जोड़कर आगे आए और जिन महाराज से माफी मांगने लगे। जिन महाराज अमन खुश हो गया क्योंकि उसे जिन्नों को ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। सभी में उसका डर कायम हो चुका था। जिन महाराज ने उन्हें माफ करते हुए कहा, आप लोगों की छोटी मोटी गलतियां हैं इसीलिए मैं आपको माफ कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इंसानों को अब किसी तरह की कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। आप सब खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। ये फरमान सुनकर सभी जिन महाराज की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। एक एक करके सभी जा चुके थे। दादा महाराज ने अमन से कहा, हमारे जाने का भी समय आ गया है, हमें केवल जिन्नों की दावत में ही आने की अनुमति है, उसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते। वैसे भी हमारी आत्मा यहाँ मौजूद है, हमारा शरीर वही बरगद के पेड़ पर है, तो हमें जाना होगा। ये कहकर दादा महाराज भी जिन महाराज को आशीर्वाद देते हुए जाने लगे। अमन उन्हें रोकते हुए बोला, लेकिन दादा महाराज मेरी बीवी मेरी तारा मुझे कब मिलेगी? दादा महाराज तारा की ओर हल्का सा देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हवेली में, यानी यहाँ से जाने से पहले तुम्हें तारा मिल जाएगी। ये कहकर दादा महाराज गायब हो गए। अमन सोचता ही रह गया। वो सीधा हवेली के बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि तारा आएगी तो यहीं से ही आएगी। दादा महाराज की कही हुई बातें कभी झूठी नहीं होती, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। करिश्मा जी भी तारा के आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गईं। तारा सोनल की ओर देखकर कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार हमें जाना कब है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँ अमन के सामने। एकदम से दादा महाराज भी ये कहकर चले गए कि तारा आज तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? मैं तो यहीं मौजूद हूँ। सोनल परी तारा की ओर देखकर कहने लगी, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखते हैं कि अमन सर वहाँ क्या कर रहे हैं। ये कहकर वे लोग भी अमन के पीछे पीछे हवेली के बाहर दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और अमन की ओर देखने लगे। अमन बेचैनी से हवेली की ओर आने वाले हर रास्ते की ओर देखने लगा कि ना जाने किस रास्ते से उसकी बीवी तारा आएगी। तभी अचानक तारा ने देखा कि कई लड़कियों का झुंड अमन की हवेली की ओर आ रहा था। तारा और सोनल परी का बुरा हाल हो गया। अमन उन लड़कियों की ओर देखने लगा। उसे लगा कि हो सकता है इनमें तारा भी हो। वे सभी लड़कियां आकर अमन के पास खड़ी हो गईं। अमन हर एक लड़की को देखने के बाद बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तभी उन सभी लड़कियों के झुंड के बीच से एक बहुत खूबसूरत लड़की थोड़ी आगे आई।